अरुणिमा अपने कमरे की खिड़की पर खड़े होकर बाहर चांद को देख रही थी। तभी उसे अपने बाबा की याद आने लगी। उसके बाबा ने उससे कहा था कि जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं वे आसमान में चमकता हुआ सितारा बन जाते हैं। वो एक चमकते हुए सितारे को देखकर अपने मन में अपने बाबा को याद करते हुए कहती है, कभी सोचा नहीं था मेरी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी बाबा, जहाँ पर मुझे मौत ज़िंदगी से ज़्यादा बेहतर लगेगी। पर मेरी मजबूरी देखिए, मैं तो मर भी नहीं सकती हूँ। कभी सोचा नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में, प्यार, रिश्ता, शादी, घर परिवार, ये सब कभी मेरी ज़िंदगी में मायने ही नहीं रखते थे। मैं तो पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। पर देखिए, पैरों पर खड़े होना तो दूर की बात है, मैं तो अपने पैरों पर चल भी नहीं पाती हूँ। क्या यही मेरी किस्मत है? अगर ये मेरी किस्मत है तो ऐसी किस्मत क्यों मिली है मुझे? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है? कहने के लिए तो मैं इस रियासत की रानी हूँ, पर देखिए, मेरी हैसियत एक नौकरानी से भी गिरी हुई है। लेकिन मैं इस बात की शिकायत करूँ भी तो किससे, क्योंकि मुझे ये तकलीफ़ देने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा पति ही है। तभी अरुणिमा को पिछली रात की बात याद आती है जब आस्तिक उसके साथ था। उसने अपने मन में सोचते हुए कहा, लेकिन राजा साहब, उन्होंने भी तो कम तकलीफ़ें नहीं सही हैं, उनका अतीत भी तो बहुत बड़ा है। अपनी माँ को खो दिया, छोटे छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी, इन सब के बावजूद भी उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया बल्कि हिम्मत से सबका मुकाबला किया और डटकर सबका सामना किया। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? उनका रवैया तो एक मामूली इंसान के लिए भी बहुत नरम दिल और स्नेहपूर्ण है। ऐसे में वो मेरे साथ इतना क्रूर क्यों है? क्यों मेरे साथ ये सब कर रहे हैं? और राजा साहब ने जो रात में कहा था, क्या उसमें कोई सच्चाई थी या वो उन्होंने सिर्फ नशे की हालत में कहा था? अरुणिमा को पिछली रात याद आने लगती है जब आस्तिक नशे में अरुणिमा के करीब आ रहा था। वो धीरे धीरे करके अरुणिमा के शरीर से उसके कपड़े हटा रहा था। आस्तिक अरुणिमा की साड़ी के आंचल को खींचते हुए कहता है, तुम मेरे दिमाग पर काबू कर रही हो, खेल रही हो मेरे साथ। मैं अभी भी कह रहा हूँ, यहीं पर रुक जाओ, मेरे साथ खेलना तुम्हारे लिए भारी पड़ सकता है। अरुणिमा अपनी साड़ी को खींचते हुए कहती है, राजा साहब, आप नशे में हैं, आपको सो जाना चाहिए। लेकिन आस्तिक ने जोर लगाकर साड़ी को खींचकर अरुणिमा के शरीर से अलग कर दिया और बेड के नीचे फेंकते हुए वो अरुणिमा के ऊपर आ गया। आस्तिक अरुणिमा के दोनों हाथों को गद्दे में दबाते हुए कहता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ, अभी, इसी वक्त, क्योंकि मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम मुझे संभालो। अरुणिमा जानती थी, आस्तिक नशे में हो या होश में, अगर उसे अरुणिमा चाहिए तो बस चाहिए। कल रात की प्रताड़ना इतनी थी कि अरुणिमा के शरीर में अभी भी दर्द हो रहा था, लेकिन वो जानती थी आस्तिक को गुस्सा दिलाकर वो अपने दर्द को और नहीं बढ़ा सकती है। आस्तिक धीरे धीरे अरुणिमा के शरीर से उसके कपड़े अलग कर रहा था, पर साथ ही साथ अरुणिमा के शरीर पर उसके दिए जख्म देख रहा था। आस्तिक ने अरुणिमा के कंधे पर हो रखे जख्म पर अपना हाथ रख दिया। अरुणिमा एकदम से तड़प गई। आस्तिक के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी और उसने अरुणिमा की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे जिस्म पर मेरे दिए हुए निशान बहुत खूबसूरत लगते हैं, ये इस बात का सबूत है कि तुम मेरी हो। अरुणिमा बहुत ज्यादा डर रही थी और वो इन सब चीज़ों के लिए रेडी भी नहीं थी, लेकिन आस्तिक ने कब उससे परमिशन मांगी है? अचानक से आस्तिक का भार अरुणिमा को अपने शरीर पर महसूस होता है और वो एकदम से चौंक पड़ती है। अरुणिमा बुरी तरह से तड़प रही थी और खुद को वहां से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सारी कोशिश आस्तिक ने अपने वजन से नाकामयाब कर दी थी। अरुणिमा लगभग बेहोश होने को ही थी कि तभी उसे अपने कान में आस्तिक के कुछ शब्द सुनाई दिए जो नशे की हालत में बड़बड़ा रहा था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जंगल में कुछ लोगों ने पृथ्वी और जाह्नवी को बंदी बना लिया था। वो लोग उन दोनों को लेकर जंगल में आते हैं और एक जगह लाकर खड़ा कर देते हैं। उन सबके पास तलवार थी। जाह्नवी उन सबको देखकर हैरान हो रही थी, लेकिन पृथ्वी समझ गया था कि यहाँ क्या माजरा है। उनमें से एक आदमी आगे आता है और कहता है, पृथ्वी रायचंद, तो तुम हमारी पकड़ में आ ही गए। पृथ्वी उन्हें देखकर कहता है, कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? हमें इस तरीके से बंदी क्यों बनाया हुआ है? उस आदमी ने पृथ्वी से कहा, हम कौन हैं ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, तुम बस इतना जान लो कि अब तुम हमारी कैद में हो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी उनमें से दो लोगों ने तलवार पृथ्वी और जाह्नवी की तरफ कर दी। जाह्नवी जल्दी से दो कदम पीछे होती है और कहती है, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, आप पहले इनसे निपट लीजिए, तब तक शायद मैं तैयार हो जाऊँ। पृथ्वी गुस्से में घूमता हुआ जाह्नवी को देखता है और कहता है, मुंह बंद रखो अपना। जाह्नवी पृथ्वी को देखकर गुस्से में कहती, इन लोगों के पास तलवार है, अरे यार कौन से जमाने से आए हैं ये लोग, तलवार से कौन लड़ता है आज के टाइम पर। उसके बाद जाह्नवी उन लोगों को देखती है और कहती है, आप लोगों के पास कट्टा नहीं है क्या? वो लोग हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं और फिर जाह्नवी को देखकर कहते हैं, कट्टा क्या होता है? जाह्नवी उनकी बात पर हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, क्या बात कर रहे हैं,
अच्छा मजाक करते हैं, आप लोगों को कट्टा नहीं पता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर सच में आप लोगों को नहीं पता तो बड़े थर्ड क्लास गुंडे हैं आप लोग। पृथ्वी अपनी आंखें बड़ी किए हुए जानवी को देख रहा था, जैसे कि उसे आंखों से ही चुप रहने का इशारा कर रहा हो। लेकिन वो सारे लोग हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं और फिर जानवी को देखकर कहते हैं, ए लड़की, मुंह बंद रखो अपना, वरना सबसे पहले तुम्हारी जान जाएगी। पृथ्वी जल्दी से जानवी के सामने आता है और उसे कवर करते हुए कहता है, देखो मैं नहीं जानता तुम्हारी हमसे क्या दुश्मनी है, लेकिन मेरे पास इस वक्त तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। थोड़ी बहुत पैसे हैं, चाहिए तो ले लो और छोड़ो हमें। वो आदमी कहता है, भिखारी लगते हैं क्या हम लोग? हम यहाँ पर तुम्हें जान से मारने आए हैं, क्योंकि तुम्हारे भाई ने हमारे एक आदमी को जान से मार दिया था।